ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवद गीता यथारूप का सातवां अध्याय और श्लोक संख्या 12 पर चर्चा करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये जो अध्याय है उसे पूर्णता का परिचय कराने वाला ज्ञान जो है वो भगवान स्वयं कहते हैं और वो ज्ञान उनके बारे में है वो भी स्पष्ट करते हैं वो और के बारे में। ज्यादातर हम कुछ जानकारी धराते हैं तो अपनी खुद की जानकारी बहुत कम धराते हैं, दूसरों की जानकारी ज्यादा रखते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, जबकि भगवान हमारे जैसे नहीं। वो कह रहे हैं ये चैव सात्विका भावा राजस्तमाश्चार्य मत एवेति तान विद्धिं न त्वहं तेषु प्रेमयी। ये जो जो सारी दुनिया में पैदा हुआ है, चाहे वो सात्विक भाव वाला हो, राजसिक भाव वाला हो या तामसिक भाव वाला हो, वो मेरी शक्ति के द्वारा पैदा हुआ है। इसलिए एक दृष्टि से ये देखा जाता है कि मैं सब में हूं, क्योंकि मेरी शक्ति से पैदा हुआ तो मैं सब में हूं, भगवान कहते हैं। लेकिन मैं स्वयं स्वतंत्र रहता हूं, मैं स्वतंत्र होने के कारण ये भौतिक त्रिगुणात्मक माया में नहीं रहता, क्योंकि ये सारे भाव मेरे भाव से विरुद्ध मैंने पैदा किया है। भगवान के जो भाव है और ये दुनियादारी के भाव है, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। तो भगवान कह रहे मैंने सब कुछ पैदा किया है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो मेरी वजह से है, लेकिन मैं उसमें नहीं रहता। कोई यहां मालिक मकान मालिक बनता है, उसने सोचा है तो बहुत बड़ा मकान है, चलो किसी को किराए पर दे दो। वो कहता है मैं ये मेरा है, मैंने बनाया है, लेकिन मैं उसमें नहीं। उसी तरह भगवान ने अपनी शक्ति से ये सारी मायावी दुनिया बनाई है, वो इसलिए कह सकते हैं कि ये सब मैंने बनाया है, फिर भी मैं उसमें नहीं रहता। तो समझने दिक्कत आती है क्या? इसलिए भौतिक दुनिया में भगवान को पाना बहुत कठिन है। भौतिक दुनिया में भौतिक रित रसम से भगवान को पाना बहुत कठिन है। तो भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? हर एक जीव को पहले ये भौतिक दुनियादारी से या इसके प्रभाव से छूटने की आवश्यकता बताते हैं। तो इसलिए भौतिक दुनिया कैसे चलती है, किन गुणों से वो प्रभावित होती है, उसका थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। बाद में जो जीव है, जीव की दुनिया भगवान की दुनिया, क्योंकि वो वहां से आया है और ये विरुद्ध स्वभाव वाली दुनिया में बैठा है, वो समझ रहा है कि मैं उसका मालिक बन गया। तो भगवान कहते हैं कि इसको पहले सीखना पड़ेगा कि ये दुनिया का बनाना है, उसका शरीर दुनिया वाला होगा, शरीर ही दुनियादारी जानता, आत्मा दुनियादारी नहीं जानता, आत्मा तो अपना सनातन धर्म जानता है। लेकिन हम लोग ये शरीर को सच मानकर या अपना सच्चा स्वरूप है ये मानकर हम दुनियादारी को ही सच्चाई से देखना चाहते हैं। वस्तुतः वो हमें परेशान करने वाली, न तो दुनिया को समझ पाएंगे, दुनिया की जटिलता को समझ पाएंगे, दुनिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है उनको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लोग एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयार है। हमारे ही जानकार वाले लोग अपने को ही नुकसान करने वाले, तो ये दुनियादारी को कैसे हम समझ पाए, उसको कोई पहुंच नहीं पा। हर एक व्यक्ति को इसलिए ये जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वभाव को जाने, अपना मूल स्वरूप को जाने, और भगवान के साथ निस्बत रखता है। दुनियादारी तो शरीर, शरीर को चढ़ाने वाला कौन है? आत्मा और परमात्मा की शक्ति से चलाता है, आत्मा की खुद तो शक्ति है ही ना। तो इसलिए भगवान हमें समझाते हैं कि तू जरा समझ अर्जुन के सारे भौतिक कार्यकलापे, ये सारी दुनिया में जो हो रहे हैं वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से हो रहे हैं। माया के हाथ में गुण यानी रस्सी, गुण यानी रस्सी, जैसे कठपुतली होती है ना, लकड़ी की बनी होती है, लेकिन उसके हाथ पांव चलाने के लिए रस्सी बांधी जाती है। तो कठपुतली वाले जो होते हैं वो हर एक उंगली में वो रस्सी बांध देते हैं, एक उंगली ये करे तो वो हाथ नीचे जाएगा, दूसरी ऊपर करे तो ऊपर जाएगा। तो इसी तरह कठपुतली को नचाने वाला ये भौतिक प्रकृति है, तीन गुण नचाते हैं, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मायावी तीन गुण हैं, उसे तर जाना बहुत मुश्किल है। जो धर्म में मानते हैं वो थोड़े सात्विक होते हैं, सात्विक कहे जाते हैं तभी धर्म में मान, लेकिन आज तो क्या सभी मांस मच्छी खाने लगे हैं तो सात्विकता तो आई नहीं, वो तो तामसिक खुराक होता है। तो सात्विकता का भाव धर्म में बताया है, उसके लिए जो व्यवहार करना है, आहार करना है, वो सब कुछ भगवद्गीता में भगवान ने भी स्वयं बताया। ऐसा नहीं कि हम लोग अनजान, पर लेकिन माया के मोह में ये तीन गुणों के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि ये दुनिया हड़प करने के पीछे हमारी भावना कभी कम होती है, हम ऐसे अंधेधुंध भागे जाते हैं। तो कि कोई भी व्यक्ति ये जीवन के व्यवहार में तीन गुणों को लांग नहीं सका, यानी कि वो पार कर नहीं सका या वश में नहीं कर सका, ये तीन गुण हैं भगवान ने अपने स्वभाव से विरुद्ध उत्पन्न किए। जो भगवान के स्वभाव के अनुसार नहीं जीना चाहता है तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान विरोधी के पास है। भगवान विरोधी कर रहे, विरोध यानी रिबेल कर रहे, हम भगवान कहते हो कहना नहीं मान, हम अपनी मर्जी से जिए। तब जब भगवान ये तीन गुण जीवों को आवृत करने के लिए बांध देते हैं कि जीव अपना मूल स्वभाव भूल जाएगा ये तीन गुणों के पास, लेकिन भगवान के मैं गुणों में फंसता नहीं, भगवान को भौतिक गुण छूते, यानी कि जब अवतार लेकर आएंगे तब वो दिव्य लीला करके ही जाएंगे। इनकी लीला को समझ पाना एक तीन गुणों के माध्यम से बहुत कठिन है, नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के दिव्य गुण पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसके द्वारा भगवान का स्वभाव क्या है वो समझ सके। एक उदाहरण में ये बताया है कि जैसे हम ये राष्ट्र के कानून को मान करके यदि किसी को शिक्षा मिलती जेल जाना वो कानून के अंतर्गत, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं तो उसके लिए ये कानून नहीं। कानून कौन बना सकता है? जो कानून का उल्लंघन न करे वो ही बना सकता है। उल्लंघन करने वाले कानून कैसे बना सकते? भगवान ने ये कानून है बनाया, लेकिन भगवान हमारे जैसे थोड़े हैं, वो तो स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए कानून कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम सब जीवात्मा जो तीन गुणों के अधीन रहती हैं, तो उसको कानून लागू होता है। इसीलिए ये भौतिक दुनिया के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान श्री कृष्ण से ही पैदा हुए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं ये तीन गुणों के वश में नहीं है, वह स्वतंत्र। इसलिए भगवान को निर्गुण कह सकते कि सत्व रज और तमो गुण रहित है, इसलिए निर्गुण है। जबकि इन्होंने ही तीन गुण बनाए, फिर भी गुण इनके छूटे नहीं, इसलिए निर्गुण कहलाता है। तो ये भगवान का एक विशिष्ट लक्षण कि ये भौतिक तीन गुणों उसे छूटे ही, चाहे उन्होंने क्यों न बनाया, छूटे ही। जबकि सबको, सब देवताओं को, सिर्फ विष्णु ने सब देवताओं को तीन गुण छूते हैं, इसलिए भौतिक दुनिया को अधीन रहते हैं। भगवान के जो आध्यात्मिक गुण है, उनके स्वभाव के अनुसार के जो गुण है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार जो ये सत्व रज और तम गुण वाले नहीं। वहां तो भगवान के तीन गुणों को दिव्य गुण सत चित आनंद बताया गया। तो कहने का मतलब है कि भगवान सारे सृष्टि के कर्ता बनने से पहले एक तीन गुणों की रचना कर लेते हैं और उसके माध्यम से बहुत सारी प्रकृति में विविधता जैसे कहते हैं ना, शून्य में से सर्जन समझ आती है आप लोगों को? समझ आती है? शून्य में से सर्जन करना, शून्य यानी कि जीरो, जीरो में से कोई कुछ पैदा कर सकता है, लेकिन भगवान के लिए शक्य है, भगवान ही कर सकते हैं शून्य में से सर्जन। दूसरे लोग जो भगवान होने का दावा करते हैं वो शून्य में से सर्जन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो झूठा दावा। ना समझ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भगवान तो बाजार में भी बिकाए जाते हैं, लेकिन भगवान की शिक्षा को पालन करने वाले कभी मूर्ख नहीं बनते। वो तीन गुणों से छूटने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि भगवान छूटे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो मुझे तीन गुण छूते ही नहीं, तो मेरे जीव को भी क्यों छूए, मेरा अंश को भी क्यों छूए। भगवान जब अवतार के रूप में आते हैं तभी भी उनको ये तीन गुण छूते हैं, हमें छू लेते हैं। जो सुन रहे हैं वो सात्विक भाव के गुण में है, जो सुनते नहीं खेलते रहते वो राजसिक भाव में, और जो सोते हैं वो तामसिक भाव में, ये गुरु के लक्षण, वो हमें हमेशा परेशान करता रहता है। सुनकर जो समझना चाहते हैं तो ये तीनों गुणों के बंधन में वो फंसना भी नहीं चाहिए। जैसे समझेंगे तो ये तो मुझे ये तीनों गुण भौतिक दुनिया में बारंबार फंसाने वाले हैं, हाँ, जिससे हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर चालू रहेगा। हम फंसे भगवान करके बताते हैं कि कैसे छूटे। वही तो हरे कृष्णा संस्था में सिखाया जाता है। यदि तीन गुणों से छूटना है, इनके प्रभाव से छूटना है, जीवन मरण के चक्कर को काटना, संसार सागर तर जाना, तो भगवान के आध्यात्मिक गुणों ग्रहण करें। वो गुण हरे कृष्णा महामंत्र गाने से आता है। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे है, भौतिक असर के नीचे नहीं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि दीवार में एक इलेक्ट्रिसिटी के प्लग रखते हैं, कोई अंदर उंगली डालता है या छूता है तो करंट होने के कारण उसके शरीर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। हाँ, जो वो व्यक्ति को छूता है तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी का शौक लगता है। हाँ, तो उसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र को कोई भी छूता है, चाहे इंडियन हो या नेपाली, चाहे अमेरिकी हो या अफ्रीकी हो, सबके अंदर वो महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति छुए। वो आध्यात्मिक शक्ति त्रिगुणातीत, त्रिगुणों से परे, इसीलिए वो भगवान का स्वभाव वाली शक्ति यदि हमें प्राप्त होती है तो भगवान का स्वभाव वाले बने, यानी कि भगवान की भक्ति करने लगे। जब भगवान की भक्ति नहीं करते तो समझो तीन गुणों में वो गोता मार रहा है, भक्ति के तीन गुणों में गोता मार रहा है, चाहे फिर कितना धार्मिक क्यों ना, लेकिन इसका जीवन सफल नहीं होता। जीवन की सफलता इन तीनों गुणों से परे होने में बताई, जिसे मुक्ति कहते, मोक्ष कहते, मुक्तिनाथ। हाँ, विष्णु भगवान का रूप है ना, या शिव जी का, हम अगले साल जाएंगे, पोखरा में हमने सेंटर खोल दिया, काठमांडू में तो है ही, आप जानते हो, बुढ़ा नीलकंठ पे, चंगू नारायण पर भी एक मंदिर कर दिया, गांव वालों ने ही दे दिया, और सिटी में भी एक बड़ा सेंटर कर दिया काठमांडू। पोखरा में तो मुक्तिनाथ, गंडकी इत्यादि सब जगह आसानी से पहुंच सकते। कहने का मतलब है मुक्तिनाथ के लिए लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मुक्ति का उपाय दर्शन से प्राप्त नहीं होता। भगवान के समझाए अनुसार ये भौतिक तीन गुणों से मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। हमारे कई शिष्य हैं और दामोदर कुंड में 12 दिन की मुसाफरी चल के करके गए, शालग्राम वहां से आते हैं दामोदर कुंड से। कहने का मतलब है ये सनातन धर्म का अंग है, क्योंकि जीव सनातन है, ये सृष्टि सनातन नहीं बताई, ऐसे तो बार बार आती है जाती है, शरीर की सृष्टि भी बराबर आती है जाती है, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि का अंग है ना, इसलिए। लेकिन आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, आत्मा भगवान के अंश। मूर्खता से ये गलत सृष्टि में आया है तो इसलिए अपना सनातन धर्म भूल गए। सनातन धर्म का पालन करने में आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए, परमात्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। दोनों के बीच में जो व्यवहार संबंध इत्यादि है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन का ये बड़ा कर्तव्य है कि लोगों को प्रशिक्षित कर सिखाए कि तीन गुणों से छूटने का उपाय सोचो। तीन गुणों से छूटने से मुक्ति कहलाती, नहीं तो अपने आप हम नहीं कर सकते हैं। तीन गुणों को लांघना बहुत बड़ी बात कहना, माया की चंगाल से इसी तरह छूट सकते हैं। इसलिए तो भगवान कहते कि जो मेरी शरण में आता है तो एक तीनों गुणों से छूट जाता है। मम माया दुरत्य, नहीं तो दैवी ऐसा गुणमयी गुणमयी त्रिगुणात्मक गुणमयी मम माया दुरत्य प्रपद्यन्ते माया मिथाम तवर्तते। जो मेरी शरण में आता है वो तीन गुणों से छूट सकता है। नेपाल में राजकीय परेशानी के कारण हम लोग छोड़ के यहां आए, ऐसा गलम। अब की बात कर रहे ऐसा गलम कहां लोगे, भगवान के चरण कमल में ले लो। ऐसा उपाय करो, नहीं तो यहां भी हमें तो दिन काटने ही पड़ेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उसमें से छूट नहीं पाए। क्योंकि आप तो स्वर्ग लोक में थे, हम तो इनको कहते कि ये पाताल लोक है। ये पाताल लोक में बलि महाराज का राज्य था, इसलिए यहाँ थोड़ी भव्यता है, लेकिन ठंडी भव्यता, उसको क्या करें, ठंडी भव्यता को क्या करें, बर्फीली। भगवान सब जगह होते हैं लेकिन वो मुक्त होते हैं, अपनी स्वेच्छा से जिन पर कृपा करते हैं इनको ही प्राप्त होते। लेकिन इनकी कृपा प्राप्त होने के लिए कोई उन्होंने लायकात बनाई कि जो मेरी पुकार करता है, सच्ची पुकार करता है तो मैं उसको सुनता और उसके लिए क्या उपयुक्त है, क्या वो उसको लायक है, उसके अनुसार ही मैं उसे सहयोग देता, उसके लिए मैं प्रोवाइड करता हूं और सुरक्षा भी देता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्ये। ये सारी जिम्मेदारी भगवान दे देते हैं कि एक भक्त जो विशुद्ध भक्त है, तीन गुणों से छूटा है, उनकी शरण में गया है, कहते हैं तेषां उनके लिए नित्य युक्ता। भगवान के साथ जिसने सनातन अवस्था वाला योग जुड़ा है उसके योग क्षेम वहां में हम योग क्षेम भगवान के साथ का जुड़ा हमेशा बना रहे, कभी टूटे ना। और भक्त को कोई परेशानी आए उसका क्षेम कुशलता सब कुछ भगवान अपने मध्य पर जिम्मेदारी के रूप में लेते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की ये मूल कार्यवाही है कि सारी जनता बिना अपवाद सभी जीव भगवान के अंश होते हैं। ये जीव भौतिक प्रकृति के प्रभाव से कोई काला शरीर धारण करता है, कोई गोरा शरीर धारण करता है, कोई पृथ्वी पर कहां पैदा होता है, कोई कहां पैदा होता है, लेकिन उससे क्या मतलब। जीव तो भगवान का अंश है, वो हरेक में एक शरीर का होता है, लेकिन हरेक की इच्छाएं अलग अलग, इसलिए इच्छा के अनुसार उनको देह प्राप्त होता है। ये पर लेकिन देह किसने दिया है, तो ये महामाया जो खप्पर लेकर खड़ी है उसने दिया है। हमें वो कह रही है, चलो मनुष्य जन्म धारण किया है, देखती हूं कैसा व्यवहार कर रहे हो, जाओ अपने पिता को के पास जाओ। माया की गोद में हम ज्यादा रह नहीं पाते। मां कहती जा पिता के पास, उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है, जो थोड़ी सी भी जानकारी रखता है तो उसे आदेश देती है पिता को। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है तो माया उसे परेशान नहीं करती, तो खप्पड़ लेकर खड़ी। जैसी थोड़ी गलती हुई जय राम से समझो, कुछ ना कुछ वो हमें शिक्षा देती। बाद में रोने धोने से क्या फायदा, उसको मनाने से क्या फायदा। भौतिक प्रकृति के नियम बहुत कड़े हैं, कोई भी लांग नहीं सकता। क्यों कड़े हैं, क्योंकि ये तीन गुण के माध्यम से सारी कार्यवाही होती है, इनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तीन गुणों के अनुसार सबके स्वभाव बने हैं। यदि किसी में ज्यादा सत्व गुण हो तो वो ठीक जेंटलमैन के रूप में आएगा, जिसका स्वभाव रजोगुणी ज्यादा हो तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार, बहादुरी बताने के लिए तैयार। गोरखा लोग रजोगुणी, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं तो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण बताया गया, और जो सिर्फ नौकरी करने वाले हैं इनको तमोगुण, यानी कि दूसरों के अधीन दूसरों पर अपना आधार मानते उनकी सेवा करने का, परिचर्या कम शुद्ध कर्म स्वभाव जम, ये चौथा। और कई तो लोग ऐसे हैं ये चारे में नहीं, इसलिए नराधम कहलाते, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कोई कैटेगरी नहीं, तो फिफ्थ क्लास के जो भी हैं। भगवान की सृष्टि में सबका सब प्रकार का एक अपने अपने लायकात के अनुसार उन्होंने स्थान दिया, लेकिन हर एक स्थान में अपने सूचित कर्म शास्त्र ने बताया है कि क्या करना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान को संतोष हो। आपको संतोष के लिए ये दुनिया नहीं बनती, भगवान के संतोष के लिए। भक्त ये समझे कि मैंने जो जो अपने स्वभावगत अपना काम है वो करके मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता, बहुत आसान है, ये तो भक्ति का मूल सिद्धांत, क्योंकि वो आत्मा के उपलक्ष्य में है, आत्मा भगवान का अंश है, वो हमेशा सनातन अवस्था में भगवान के साथ जुड़ा है, इसलिए भक्ति ही एकमात्र सनातन व्यवहार कहलाता है, सनातन धर्म। चौथा कोई चीज सनातन नहीं बताया, हम लोग सब सनातन हिंदू कहलाते हैं, लेकिन सनातन की अवस्था के बाहर ही रहते हैं। ये पेट थोड़ा सनातन है, हर समय समय अपना नाटक करता है, सुबह उठे ही खाली होता है। अब बरबर के भी थक जाओगे, खाना भी परेशान करेगा। ये धंधा क्या सनातन? सनातन धर्म भगवान की भक्ति कहता, ज्ञान मार्ग सनातन नहीं बताया, ध्यान मार्ग सनातन नहीं बताया, सिर्फ भक्ति सनातन बताई। भक्ति के लिए ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता नहीं बताई, वो भक्ति करते ही भगवान के विषय का अहेतुकी ज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति करते ही विरक्ति भी प्राप्त होती है, जैसे संसार से तर जाए। इतनी ताकत भगवान के नाम में भरी, जिसके नाम के आधार पर भक्ति शुरू होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षिणाम, ये भक्ति नव प्रकार से की जाए। इसमें भगवान की अनुकूलता वाली भक्ति तो कितनी उत्तम होती है। तो ये सब सीखना आवश्यक है यदि हम सनातन धर्म पालन करें, नहीं तो अधूरा हो, न तो सनातन कहलाता न कुछ कहलाता। आप सबसे हम ऐसा निवेदन करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सनातन धर्म की शक्ति प्राप्त करें, भगवान के साथ का जुड़ावा, भगवान का प्रेम पाने का ये जो अभ्यास है उसे आप लाभान्वित हो। इसलिए आप सभी खास करके हमारे नेपाली भाई बहनों को ढेरे ढेरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? और कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Rama.
आरती करें। नरसिंह भगवान की आरती। सभी खड़े हो जाए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय,
I'm not afraid. स्वामी महाराज की।